दुनिया एक आवाज,
एक दुनिया एक आवाज,
ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज।
आवाज नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए,
आवाज जो नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए, ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज, एक दुनिया एक आवाज।
नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज की विशेष श्रृंखला जल है तो कल है में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज की इस विशेष श्रृंखला जल है तो कल है में हमने पिछले 5 दिनों में पानी के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा की। उसी श्रृंखला की अंतिम कड़ी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है भूजल। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय भूजल आयोग से मिस्टर डी चक्रवर्ती। तो आइए उनसे बात करते हैं। चक्रवर्ती जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम जल है तो कल है में।
नमस्कार।
आजकल हम सुन रहे हैं कि भूजल कम हो रहा है या तेजी से नीचे गिर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भूजल तो आज भी उतना ही है जितना पहले था। आपको क्या लगता है चक्रवर्ती जी, कि भूजल कम हुआ है या पेयजल में कमी आई है?
देखिए, भूजल में गिरावट और पेयजल में कमी, ये दोनों ही बातें सही हैं। पिछले 2 शतक में अगर हम देखते हैं तो भूजल के स्तर में गिरावट आया है और राज्य के कई हिस्सों में हमने देखा है, जो केंद्रीय भूमिजल ने किया है उसमें 2 से 4 मीटर की गिरावट कई प्रांतों में देखा गया है, और जिसकी वजह से जो पेयजल की कमी भी लोगों में ये देखी गई है।
चक्रवर्ती जी, पहले बोरिंग जो है वो 10 से 20 फुट तक होता था, लेकिन अब वही बोरिंग 120 से 150 फुट तक भी होने लगा है। जैसे आपने कहा कि भूजल का स्तर गिरा है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है या वो कौन से कारण जिम्मेदार हैं जिससे भूजल में गिरावट आ रही है?
देखिए, जब भूजल निरंतर नीचे जा रहा है, इसकी वजह से लोगों ने अपना जो बोरिंग उनको भी नीचे लाया गया है और पानी जो है पहले की मात्रा में अपेक्षा और अधिक निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से भूजल के स्तर में और भी गिरावट आई है। इसका एक मेन कारण है जो हमारी आबादी का बढ़ना और हमारे लाइफस्टाइल में भी जो है अधिक पानी का इस्तेमाल करना भी एक कारण है, जिसकी वजह से भूजल का स्तर और हमारे जो ट्यूबवेल के डेप्थ जो है वो बढ़े हैं। और इसके बाद जो है, जो हमारे लोगों में देखा गया है कि सरफेस वाटर से ज़्यादा भूजल के ऊपर डिपेंडेबिलिटी आपके, अगर आप इरीगेशन सेक्टर में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, वो आज के डेट में कभी 50 से 60% आपका जो है खेती भूजल के ही पानी से हो रहा है।
अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अति दोहन की वजह से या जमीन से पानी ज़्यादा निकालने की वजह से भूजल में गिरावट आई है। आखिर हम ये अति दोहन क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हमें जो बेसिकली जो सप्लाई वाटर, पानी का जो सप्लाई है, वो हमारा जो नदियों से और जो सरफेस वाटर से, उसकी कमी होने की वजह से और जो भूजल वो इजीली प्राप्त होने की वजह से भूजल को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और आपके जो है इरिगेशन सेक्टर यानी खेती के शहर में भी, वहाँ पे भी भूजल का अत्यधिक दोहन है।
तो क्या चक्रवर्ती जी, अति दोहन से या धरती से ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाल लेने से सिर्फ भूजल के स्तर में गिरावट आती है या उसका स्वास्थ्य पर भी कुछ असर पड़ता है?
भूजल के स्तर के गिरावट के साथ साथ इसमें हमने ये देखा है कि भूजल अति दोहन की वजह से जो नमकीन होना, फ्लोराइड की मात्रा में भरन, आर्सेनिक, नाइट्रेट पोल्यूशन, ये सब चीज़ें जो हैं इसका सीधा सीधा एक इनका एक आंकड़ा बैठता है भूजल का अति दोहन के साथ साथ इनके बढ़ने का। इसका लोगों में स्वास्थ्य का भी देखा गया है। इसका और एक चीज़ उदाहरण जो है वो हमने देखा कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से अधिक वो भी भूजल में आने की वजह से स्वास्थ्य में उसका गया है। कई लोगों में जो आपके फ्लोरोसिस का होना, डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, आर्सेनिक से रिलेटेड जो संबंधी ये टाइप के जो बीमारियाँ हैं उसका अधिक जो है वो उभर के आया है। अगर आज के डेट में देखेंगे पश्चिम बंगाल को छोड़ के बिहार जैसे भोजपुर, बक्सर और इधर आपके उत्तर प्रदेश में बनारस, उन्नाव और ये इस एरिया में भी, लखीमपुर, इन एरिया में भी आर्सेनिक की मात्रा की अति भूजल दोहन की वजह से देखा गया है। तो इसका सीधा सीधा एक आकलन आप कर सकते हैं कि भूजल के अति दोहन के साथ साथ हमने ये देखा है कि उसमें जो है जो मिनरल कंटेंट जो है वो बढ़ के आया है, उसकी वजह से स्वास्थ्य में भी लोगों में इसका एक असर दिखता है।
चक्रवर्ती जी, आप तो केंद्रीय भूजल आयोग से जुड़े हैं, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि अगर भूजल दोहन के इतने दुष्परिणाम हैं और ये स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है तो भूजल आयोग इस दिशा में क्या प्रयास कर रहा है?
देखिए, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड जो कि पूरे हिंदुस्तान का जो है भूजल की पूरी मुआयना करती है, और हमने एक हमारा एक डेमोंस्ट्रेटिव स्कीम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का पुनर्भरण करना, इसका हम एक मुहिम चलाया है जिसके थ्रू लोगों को हम आमंत्रित करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि वो स्कीम्स लें। नरेगा में भी भूजल के रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज़ ईयर मार्क्ड हैं, और हमने वाटर बॉडीज़ के रिपेयर, रेनोवेशन एंड रेस्टोरेशन का भी एक प्रोजेक्ट स्कीम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है। इसके साथ साथ हम लोग हमारे वेबसाइट के थ्रू डाटा शेयर करते हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ब्रोशर है कि एक छोटे से एरिया के लिए क्या क्या चीज़ें भूजल से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, और हमने पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट यूज़र मैप्स बनाए हैं जिसके थ्रू आपको भूजल का स्तर, उसकी क्वालिटी और कहाँ कहाँ पे भूजल आप दोहन कर सकते हैं और कहाँ पे पुनर्भरण कर सकते हैं इसकी जानकारी पूरी दी जाती है।
तो चक्रवर्ती जी, आपने बताया कि केंद्रीय भूजल आयोग कैसे वेबसाइट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और विभिन्न स्कीमों के माध्यम से हमारे लोगों के बीच में भूजल से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा रहा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि दूर दराज के वो इलाके देश के जहाँ पर पानी से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन वहाँ की जनता पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो उस तरह के लोगों के बीच हम भूजल से जुड़े जितने भी समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी और उनके बारे में संदेश उन लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारा भूजल आयोग क्या काम कर रहा है?
देखिए, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड प्रति वर्ष एक मास अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम करती हैं। हम उन जिला को लेते हैं जहाँ पे भूजल से संबंधित कुछ ना कुछ कहीं प्रॉब्लम, चाहे दोहन की वजह से हो चाहे वो क्वालिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, उन एरिया को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, और वो अवेयरनेस प्रोग्राम में हम ये करते हैं, कोशिश ये किया जाता है कि वो उस प्रांत के जो भाषा में उस वहाँ पे अवेयरनेस उस तरह से हो, और जो अवेयरनेस मटेरियल भी बनाते हैं वो हम उस लोकल लैंग्वेज में बनाते हैं, उनके समुदाय के बीच में उनके साथ हम हमारे जो जितने भूजल से संबंधित है उस एरिया की वजह का जो है भूजल के वो हम उनके बाद उनके समक्ष में रखते हैं, और एक प्रश्न मंच तरह का हम एक वो भी क्रिएट करते हैं जिससे हम ग्रामीण लोगों से पूछते हैं कि उनके उस एरिया में भूजल संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम वो देखते हैं और उसका हम जवाब करते हैं, एक इंटरेक्टिव सेशन टाइप का करते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि ग्रामीण लोगों को हम सक्षम बनाएं कि भूजल के प्रति संरक्षण और किस तरह के ट्यूबवेल का डिजाइनिंग किस तरह से किया जाए, हैंडपम्प की सुरक्षा कैसे की जाए, उसके लिए भी हम एक छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं जिसके थ्रू हम ग्रामीण लोगों में एक सक्षमता लाते हैं कि वो किस तरह से अपने भूजल का संरक्षण और उसका प्रदूषण और किसी रिलेटेड चीज़ों से उसकी बचाव कर सके। तो इस टाइप के एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे टारगेट होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही होते हैं।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या वो अशिक्षित समुदाय के लोग आपके इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं?
कई जगहों में देखा गया है कि हमने ये सरपंच और मुखिया के थ्रू हम इन एक्टिविटी को करते हैं, और उससे हमने देखा है कि कई कई हमारे मास अवेयरनेस प्रोग्राम में 500 से 1000 लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने इन चीज़ों को समझा है, और उसके साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है वो साल भर वहाँ के सरपंच और मुखिया के साथ में टच में रहते हैं कि अगर उनके पास और भी बाद में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसकी हम तकनीकी जानकारी दे के और उन ग्रामीण लोगों के साथ मिल के वो भूजल के जो जो हैं उनके उपाय और निजात के बारे में हम उनके साथ चर्चा करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करके देते हैं।
तो चक्रवर्ती जी, विश्व जल दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले वर्षों में अगर हमें रियली जल और भूजल इन दोनों को बचाना है तो हमें एक 5 मंत्र को माइंड में रखना पड़ेगा। पहला है रिड्यूस, कम इस्तेमाल करें। दूसरा है रीयूज, हम पानी को बार बार इस्तेमाल करें। रिसाइकल, हम उसको ऐसे तकनीक के थ्रू कि हम उसको किस तरह से दूसरे प्रयोग में ला सकें। और चौथा है कि हम रिचार्ज, जो कि हम अगर बैंक की तरह है भूजल से पानी निकाल रहे हैं और वर्षा के समय उसका हम पुनर्भरण कर पाए। और इन सब के ऊपर है कि हमें जल के प्रति एक रेस्पेक्ट अगर हम लाएं तो हमारा ये जो है आने वाला भविष्य हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा।
चक्रवर्ती जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मीनाक्षी।
तो दोस्तों, पिछले 5 दिनों में हमने ये जाना कि पानी का हमारे स्वास्थ्य से कैसे सीधा और गहरा संबंध है। पानी अगर गंदा हो तो हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। अगर मलेरिया, डेंगू, डायरिया जैसी बीमारियों से बचना है तो दोस्तों साफ सफाई का खास ख्याल रखें। इस कार्यक्रम में हमने यह भी जाना कि पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो दोस्तों, अभी से पानी बचाने की मुहिम में आप भी जुट जाइए, तभी सार्थक होगा विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य, स्वस्थ विश्व के लिए साफ पानी। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपके मन में जल संबंधी कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें मोबाइल पर टाइप करें जल अपना सवाल और भेज दें 9811846246 पर। नंबर एक बार फिर सुन लें 9811846246। श्रोताओं, अगर किसी कारणवश आप यह कार्यक्रम रेडियो पर न सुन पाए हों तो इसे आप हमारी वेबसाइट hindi.indiawaterportal.org या edaa.in पर भी सुन सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एक दुनिया एक आवाज,
एक दुनिया एक आवाज,
ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज।
आवाज नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए,
आवाज जो नई दिशा दिखाए, आवाज प्रगति की ओर बढ़ाए, ये है हम सबकी आवाज, आपकी हमारी हम सबकी आवाज, हम सबकी आवाज।